नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इससे पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। एनसीपीआई सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
वेलकम के साथ जो जो है और उसके बाद बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए है। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश के समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलत फहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।